सब लोग काफी खुश थे। आहान से रौनक की शादी होने वाली थी, ध्रुव की वंशिका से, एंजल की अविनाश से और सुमित की राधिका से। सभी चारों नए जोड़े बेहतरीन तरीके से तैयार हुए थे। उस विशेष मौके पर आस्था ने अपनी माँ की पसंदीदा साड़ी और अपना पसंदीदा लॉकेट पहना था। वो बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। जल्दी ही चारों जोड़ों के लिए चार मंडप सज चुके थे। शादियों की रस्में धूमधाम से शुरू हो गईं। टाइगर और मरिया किनारे खड़े थे, बाकी सब शादी का आनंद ले रहे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त अरमान अचानक दादाजी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर सब हैरान हो गए और हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। अरमान अपने घुटनों के बल बैठ गया और दादाजी का हाथ थामकर उनकी ओर इज्जत भरी नज़रों से देखते हुए दमदार आवाज में बोला, दादाजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने आपको शायद बहुत परेशान किया है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में सबसे बड़ा योगदान सिर्फ आपका है। आप आस्था जैसी काइंड हार्टेड लड़की को मेरे जैसे हार्टलेस की ज़िंदगी में लेकर आए, ज़बरदस्ती ही सही, पर आपने आस्था जैसी प्यारी लड़की से मेरी शादी करवाई, उसके लिए मैं आपका ढेर सारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप जानते हैं दादाजी, मैं शायद अपने व्यवहार या अपने अहंकारी स्वभाव की वजह से कभी आपको कह नहीं पाया, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये परिवार, जो शायद कभी मेरा था ही नहीं, लेकिन अब ये परिवार सिर्फ मेरा है और हम सब एक साथ एक छत के नीचे रहेंगे। आप नहीं जानते कि मैं आज कितना खुश हूँ। ये बोलते हुए अरमान की आंखें छलक उठी थीं। ठीक उसी वक्त आस्था अरमान के पास आई और उसका हाथ थामकर खड़ी हो गई। अरमान ने मुस्कुराकर आस्था की ओर प्यार भरी नज़रों से देखा और पलकें झपकाईं। दादाजी अरमान की बात सुनकर काफ़ी भावुक हो गए थे। वे आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। फिर दादाजी गंभीर होकर बोले, तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर भावुक होकर बोले, मेरे बेटे के जाने के बाद तुम मेरे बेटे की आखिरी निशानी हो, तो भला मैं तुमसे प्यार कैसे नहीं करता और तुम्हारी परवाह क्यों नहीं करता? आखिर तुम ही तो मेरे जीने की वजह हो। अरमान हल्का सा मुस्कुराकर बोला, आज मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। दादाजी का दिल भर आया और बड़ी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए बोले, तुमने आस्था जैसी इतनी प्यारी बहू मुझे दी है, इतना अच्छा परिवार दिया, तो बेटा मुझे और किसी तोहफे की कोई ज़रूरत नहीं है। अरमान दबी हुई आवाज़ में ज़िद करते हुए बोला, नहीं नहीं दादाजी, ज़रूरत है। मैंने आपकी आंखों में उस तोहफे के लिए खालीपन देखा है दादाजी, और मुझे लगता है कि आपका खालीपन अगर कोई दूर कर सकता है तो वो सिर्फ मेरा वो खास तोहफा है। दादाजी परेशान होकर अरमान की ओर देखने लगे कि ये क्या पहेलियां बुझा रहा है। लेकिन उसी वक्त अरमान आदेश देने वाली आवाज़ में बोला, देव। जैसे ही देव बोला गया, सब लोग देव को ढूंढने लगे। जैसे ही प्रवेश द्वार की तरफ से देव दिखा, जो एक बड़े ही कमाल की शख्सियत के साथ आ रहा था। उनका आभा मजबूत और प्रभावशाली व्यक्तित्व था। वे एकदम सुंदर और आकर्षक लग रहे थे। ये थे मिस्टर अभिमान सिंघानिया, यानी अरमान के पिता, जो देव के साथ आ रहे थे। अरमान के पिता पूरी तरह ठीक हो चुके थे। देव ने उनके साथ रहकर उनका इलाज पूरा कर चुका था और फिर उन्हें वापस भारत ले आया था। जैसे ही अभिमान जी दादाजी के सामने आए, उन्होंने खुशी से बाहें फैलाकर अपने पिता को गले लगा लिया और फिर उन्होंने अरमान को सीने से लगा लिया। अपने बेटे को वहां देखकर दादाजी की तो जैसे दिमाग में हलचल मच गई। उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। दादाजी अभिमान जी को काफी देर तक एक दूसरे के गले लगाकर रोते रहे। इस तरह से बाप बेटे को मिलते देखकर सब लोगों की आंखों में नमी थी। ठीक उसी वक्त दादाजी ने अरमान के गालों को छूते हुए भावुक होकर कहा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मेरा जीता जागता बेटा मुझे लौटा देगा। मेरे बच्चे, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलकर दादाजी अरमान का ढेर सारा शुक्रिया करते हुए उसे दुलार करने लगे। फिर मिस्टर अभिमान सिंघानिया बात संभालते हुए मजाकिया अंदाज में बोले, अब आप लोग यहीं खड़े रहेंगे तो सब दूल्हा दुल्हन क्या कहेंगे कि मेरे आने से उनकी शादी ही रुक गई है। प्लीज़ फटाफट से शादी का फंक्शन पूरा कीजिए। और जल्दी ही उनके कहने पर शादी का फंक्शन शुरू हो चुका था। आहान, जो कुछ देर तक अपने चाचा जी से लिपटा हुआ था, एक बार फिर जाकर शादी के मंडप में बैठ गया और मुस्कुराकर रौनक की ओर देखने लगा। वहां का माहौल एक बार फिर खुशनुमा सा हो गया था। जल्दी ही बड़े धूमधाम से चारों की शादी शुरू होने लगी थी। जल्दी ही जयमाला की बारी आई थी। सुमित ने राधिका को बड़ी ही आसानी से जयमाला पहना दी थी और राधिका ने भी सुमित को। वहीं एंजल, अविनाश, साथ साथ ध्रुव और वंशिका ने भी नॉर्मली तरीके से एक दूसरे को जयमाला पहना दी थी। लेकिन अब जब रौनक और आहान की जयमाला पहनने की रस्म थी, तब रौनक को थोड़ी सी शरारत सूझ गई थी। चुलबुधू और शरारती रौनक ने देखा कि आहान बार बार मुस्कुरा रहा था और जयमाला डालने के लिए पूरी तरह से उतावला हो रहा था। तब रौनक ने सोचा कि क्यों ना उसे थोड़ा सा सताया जाए। तो ये सोचते ही, जैसे ही रौनक नानीमा और दादाजी के आशीर्वाद से जयमाला पहनाने के लिए थोड़ा सा आगे आई, वो तुरंत ही पास में रखे हुए सोफे पर चढ़कर खड़ी हो गई थी। अब जैसे ही वो वहां खड़ी हुई, रश्मि ने तुरंत अपने सिर पर हाथ मार लिया था। वो सोचने लगी थी, ये लड़की कभी भी नहीं सुधरने वाली है।
और जयमाला हाथ मिलिए सोफे पर खड़ी होकर रौनक आहान की ओर देखकर एक आंख मारते हुए बोली, छछुंदर मैं भी तो देखूं तुम में कितनी ताकत है। क्या तुम वाकई मुझे जयमाला पहना सकते हो? अगर हाँ तो जरा पहना के तो दिखाओ। ये बोलकर जैसे ही रौनक ने आहान को चैलेंज किया, आहान पूरी तरह से शेर हो गया था। वो मदद की उम्मीद से अपने साइड में खड़े हुए ध्रुव की ओर देख रहा था और आंखों ही आंखों में उसे इशारा कर रहा था कि वो उसके पास आकर उसे गोद में उठा ले ताकि वो रौनक के गले में जयमाला डाल सके। लेकिन दूल्हा बना हुआ ध्रुव उसे इशारों में बता रहा था कि उसने भी जयमाला पहनी हुई है और उसकी भी आज शादी हो रही है, तो भला वो इस तरह से उसकी मदद कैसे कर सकता है। अब जैसे ही उसने ये कहा, आहान का मुंह बन गया था। वो रौनक की ओर देखकर बोला था, रौनक देखो ना कितनी आसानी से सबने जयमाला की रस्म पूरी कर ली, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें बच्चों जैसा बर्ताव करने की क्या जरूरत है? तुम्हें नॉर्मल बर्ताव करना चाहिए ना। आओ ना प्लीज, फटाफट से जयमाला की रस्म कर लेते हैं, उसके बाद देखो बाकी के कितने सारे रस्म हैं, हमें वो सारी रात में साथ निभानी है ना। अब जैसे ही आहान ने रौनक की खुशामद करते हुए ये कहा, सब खिलखिलाकर हंस पड़े। रौनक के साथ साथ बाकी सब भी हंस पड़े थे, क्योंकि आहान रौनक को बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था और पपी फेस बनाकर आहान उसके खुशामद कर रहा था। वो बड़ा ही फनी दिखाई दे रहा था। फिलहाल आस्था ने तुरंत अरमान को कोहनी मारी थी। अब जैसे ही उसने उसे कोहनी मारी, अरमान आस्था की बातों का मतलब समझ गया था और बोला था, सीरियसली तुम चाहती हो मैं ये करूं? तब आस्था ने दो बार अपनी पलकें झुकाई, तब अरमान हल्का सा मुस्कुराया और सीधा स्टेज की तरफ बढ़ने लगा था और जाकर उसने सीधा आहान को अपनी गोद में उठा लिया था। अब तो आहान ये देखकर पूरी तरह से खुशी से चिल्ला पड़ा था, ये मेरा भाई, मेरा शेर भाई आ गया। अब देखो मिस हवा हवाई, मैं तुम्हें कैसे जयमाला पहनाता हूँ। ये बोलकर देर ना करते हुए जल्दी ही अरमान की गोद में उठाते ही आहान ने फटाफट से रौनक को जयमाला पहना दी थी। अब तो रौनक अरमान को घूर कर बोली थी, आप क्या कर रहे हैं भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने उसकी साइड ले ली, आपको मेरी साइड लेनी चाहिए थी।
लेकिन अब आहान की बारी थी रौनक को सताने की और फटाफट से वो भी जाकर सोफे पर खड़ा हो गया था। अब अरमान ने रौनक को भी गोद में उठा लिया। अब तो रौनक भी चिल्ला पड़ी थी और आहान को चिढ़ाते हुए बोली थी, देखा तुमने अब हिसाब बराबर का हुआ। ये बोलकर रौनक ने भी जल्दी ही आहान को जयमाला पहना दी थी। फिलहाल हंसी खुशी के माहौल में जल्दी ही चारों की शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी, शादी संपन्न हो गई। चारों ने बारी बारी से बड़ों से आशीर्वाद लिया, नानी माँ भी ढेर सारा आशीर्वाद दे रही थी। फिलहाल आहान जो अपनी कमर पकड़कर बैठा हुआ था, इस वक्त ध्रुव के पास खड़ा हुआ और करहाते हुए बोला, यार मैं आज रात को क्या करूँगा, नानी माँ ने तो मेरी कमर पर जमकर धुलाई की है, मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम तो जानते हो मेरी वाली कितनी तेज है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी अगर मैं अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दूंगा। ये बोलते हुए आहान ध्रुव की ओर देखने लगा। ध्रुव उसे घूर कर बोला, क्या यार फालतू की बातें लेकर बैठा है, चल फटाफट, हमारी दुल्हनिया हमारा इंतजार कर रही होगी। आहान शरारती मुस्कान लाते हुए बोला, तो देख तेरी वाली इंतजार कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन देख बाजी तो मैं ही मारूंगा, वैसे भी मैं तो बाप भी बनने वाला हूँ, कैन यू बिलीव दैट। ध्रुव ने मुस्कुराकर अपने सर पर हाथ मार लिया कि इस आहान का कुछ नहीं हो सकता है, उससे बात करना बिल्कुल बेकार है। सभी लोग अपने कमरे में मौजूद थे। प्रियंका और उसका पति शादी में शामिल होने के बाद वापस अपने घर चले गए। मनोज जी अपनी माँ यानी नानी माँ के सामने आकर शांत स्वर में बोले कि वे भी उनके साथ घर चलेंगे, लेकिन आस्था और अरमान ने नानी माँ को जाने से रोक लिया था क्योंकि वे अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नानी माँ अब सिर्फ उनके साथ रहेगी, लेकिन अगर कभी उसके मामा मामी का मन हो तो वे नानी माँ से मिलने के लिए उनके घर यानी सिंघानिया मेंशन में आ सकते हैं, मेंशन के दरवाजे उनके लिए खुले रहेंगे। सारी शादी पूरी हो चुकी थी, दूल्हा दुल्हन सब अपने कमरे में चले गए थे, लेकिन आस्था, अरमान, अविनाश और अबीर अभी भी हॉल में मौजूद थे। अबीर मुस्कुराते हुए अविनाश के पास आया और उसे मुस्कुराकर शादी की मुबारकबाद दी। इस बीच आस्था अबीर के पास गई और हल्की सी मुस्कान करते हुए बोली, अबीर जी सच में आप एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और वाकई आपके जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। ये बोलते हुए आस्था की आंखें छलक पड़ी। अबीर आंखों में मिलीजुली भावनाएं लाते हुए बोला, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहती हो अपने जैसी कोई लड़की मेरी जिंदगी में ले आओ। जैसे ही अबीर ने ये बोला, अरमान एक आंख उठाकर उसकी ओर देखने लगा, मानो कहना चाह रहा हो कि आस्था सिर्फ उसकी है और उसकी परछाई पर भी सिर्फ उसी का अधिकार है, आस्था जैसी कोई और हो ही नहीं सकती। आस्था ने अरमान के चेहरे पर कठोर भाव देख लिए थे जो इस वक्त जलकर राख हो चुका था। अपनी हंसी छुपाते हुए आस्था मन ही मन में अरमान को देखकर मुस्कुराई और अगले ही पल अबीर की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखकर बोली, मिस्टर राठौर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मुझसे भी अच्छी लड़की जरूर मिलेगी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये बोलकर आस्था ने अबीर को शुभकामनाएं दी और जल्दी ही अबीर आस्था और अरमान से विदा लेकर वहां से रवाना हो चुका था।
बाहर आने के बाद अबीर सिंह राठौर सिंघानिया मेंशन को आखिरी बार अपनी भारी नजरों से देख रहा था, क्योंकि उसने हमेशा हमेशा के लिए विदेश में शिफ्ट होने का फैसला कर लिया था। इसीलिए वो आखिरी बार आस्था और इस घर को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था। बाहर निकलने के बाद अबीर के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो एकदम गायब हो गई थी और उसकी आंखों के किनारे भीग गए थे, और वो टूटे हुए दिल के साथ बोला, इस दिल ने पहली और आखिरी बार मोहब्बत की है और अब शायद इस दिल को कभी मोहब्बत नहीं होगी। खुद से बुदबुदाते हुए अबीर सिंह राठौर जल्दी ही अपनी कार में जा बैठा और वहां से अपनी जिंदगी के नए सफर के लिए रवाना हो चुका था। वहीं दूसरी ओर इस वक्त हॉल में अरमान, आस्था, नानी माँ और दादाजी मौजूद थे। बाकी सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने कमरे में थे। आज घर का माहौल काफी शांत और शांतिपूर्ण था, क्योंकि अरमान के पिताजी अभिमान काफी लंबा सफर तय करके आए थे। दादाजी ने उन्हें भी आराम करने के लिए भेज दिया था और मुस्कुराकर अरमान और आस्था की ओर देख रहे थे। आखिरकार उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया था। किसी की भी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। नानी माँ आस्था के पास आई और उसके सर पर हाथ रखकर सहलाते हुए बोली, बेटा मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार तुझे इतना प्यारा सा परिवार मिला, इतना प्यार करने वाला पति मिला, अब तो मैं सुकून से मर सकती हूँ। जैसे ही नानी माँ ने ये बोलकर अपनी खुशी जाहिर की, आस्था तड़प उठी और नानी माँ को गले लगाकर बोली, नानी माँ आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? अरे अभी तो आपको डबल सेंचुरी लगानी है, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। नानी माँ भावुकता से बाहर निकलकर बोली, अरे हाँ हाँ मैं कौन सा अभी मर रही हूँ, और वैसे भी अभी तो मुझे तेरे बच्चों के साथ साथ उनके बच्चों की भी शादी देखनी है। ये बोलकर नानी माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। दादाजी भी मुस्कुरा दिए, फिर आस्था और अरमान की ओर देखकर चिंता करते हुए बोले, बेटा बहुत रात हो गई है, मुझे लगता है कि अब आप दोनों को भी आराम करना चाहिए। दादाजी की बात मानकर अरमान और आस्था एक साथ कमरे में चले गए। कमरे में आने के बाद वे दोनों एक दूसरे को बाहों में समेटते हुए अपने प्यार भरे लम्हों में खो गए।